ओम शांति। आप सभी मधुबन में जो एक या दो बार आए होते हैं और उसके बाद जब मधुबन आने का प्रोग्राम बनता है तो आप खुद महसूस करते हैं कि जब से टिकट बनती है मधुबन आने की, तब से ही मन पुलकित होने लग जाता है। ऐसे ही होता है ना, तब से मन में लड्डू से फूटने लग जाते हैं, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। और 15 दिन पहले और जब 15 दिन 10 दिन रह जाते हैं तो वो कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि अब 10 दिन रह गए मधुबन जाने के, 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, ऐसे। तो ये खुशी बरकरार रहे, मधुबन का आनंद, उसकी खींच, उसकी कशिश हमेशा बनी रहे, उसके लिए यहां होते हुए भी हम बहुत सारी चीजें कि यहां जितने भी मधुबन में आपको सब मिलते हैं, आपको भोजन बनाकर खिलाने वाले, हॉल में बिठाने वाले, क्लासेस कराने वाले, आपके लिए घर की सुंदर सजावट करके आपके कमरे तैयार करके रखने वाले, आपके आने से पहले तैयारी होती है ना, ये तो आपके लिए कमरे साफ करके सुंदर बना के रखे जाते हैं। आप तो सिर्फ आते हैं उसमें अपना सामान रख देते हैं, जब भी आते हैं उससे पहले भोजन भी आपके लिए तैयार होता है कि आज इतने आने वाले हैं, आपकी सूचना मिली होती है, आपको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां भी पहुंची हुई होती हैं। और घर में जब आपने कहीं दूर से आना होता है और पहुंचते हो तो कितनी बार अपने बेटा बेटी बहू को फोन करते हो ना, कितनी बार फोन करते हो, हम पहुंचने वाले हैं, गाड़ी रुकने वाली है, यहां पहुंचेंगे, वहां ऐसे हो गया, अब पहुंचेंगे, ये सोचकर कि वो ठीक टाइम पर आपको लेने पहुंच जाएं। और फिर भी शायद वो कोई ना कोई बहाना भी बना सकते हैं कि इतनी रात को, इतनी सुबह सुबह कौन उठकर लेने आएगा, आप ऑटो करके आ जाना, आप टैक्सी करके आ जाना, फिर भी वो ऐसी बात जरूर बोल देते हैं। तब आप सोचिए कि ये पिता का, बाप का घर है जहां इतनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इससे पहले भक्ति में अगर जितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं, योग कर रहे हैं, इतनी देर वहां इंतजार करना होता तो नीचे जमीन पे चौकड़ी लगा के बैठना पड़ता था और कितनी देर बैठे बैठे थक जाते थे। और वहां योग तो कोई जानता ही नहीं था, भक्ति में सोचते थे कब तक पता नहीं ऐसे बैठना है और किसके दर्शन करने हैं, जिसने प्रवचन देना है पता नहीं वो कब पहुंचेंगे। तो इस तरह की सारी व्यवस्था अच्छी अवस्था के कारण ही होती है, क्योंकि बाबा का काम स्वर्ग बनाने का है और उस स्वर्ग बनाने के काम में हम सब एक एक ईंट लगाने के लिए बंधे हुए हैं। क्योंकि बाबा ने बड़े प्यार से, अधिकार से ये कहा था कि बाबा अकेला स्वर्ग थोड़ी बनाएगा, आप सब मिलकर बनाएंगे ना, और आप सब यहाँ इकट्ठे इसीलिए होते हैं कि बैटरी चार्ज करके जाएं और घर जाकर यहाँ से बाहर निकलकर स्वर्ग बनाने के काम में बहुत बहुत दिल से, प्यार से हम सभी के सभी लग जाएं। बाबा के इस बड़े बृहद कार्य में एक एक उंगली का सहयोग दें। और इसी के लिए यहीं से हम सेवा का बीज डालना सीख जाते हैं कि क्या और कैसे सेवा करनी है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस सुनाती हूँ आपको। ज्ञान सरोवर में सेवाएं शुरू हुई और यहाँ अक्सर करके वहाँ कॉन्फ्रेंस में और उसमें थोड़े थोड़े 400-500 मेहमान आते हैं, तो वहां से आते हैं और आपको पता ही है ज्ञान सरोवर और पांडव भवन और अब तो शांति वन भी, यहाँ सब कुछ इतना हाईटेक है शांति वन में कि यहाँ भी सबको बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत बढ़िया, हर काम के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ हर चीज के लिए, तो यहाँ ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी हो गए वहां से भी। लेकिन क्योंकि वो बड़े सुंदर क्लीन ग्रीन एरिया में है और मधुबन तो टोटल है ना, चाहे ज्ञान सरोवर में आए, चाहे पांडव भवन में, चाहे यहाँ आए, हम सबको मधुबनी बोलते हैं और मधुबन अपनी छाप छोड़ता ही है। तो वहां का एक आईएएस ऑफिसर का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा कि यहां से होकर गए और उन्होंने वहां चंडीगढ़ में अपना एक एक्सपीरियंस सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा, इतनी ज्यादा शांति थी और मुझे इतनी ऊंची आवाज में बोलने की आदत थी, तो सुबह 4 से पहले 4:15 बजे ही यहाँ ट्रेन रुकी। और हम सभी जानते हैं यहाँ तक पहुंचने का ट्रेन ही सबसे अच्छा सफर है। तब भी बाय एयर, जब 20 साल पहले जब वो आए थे तो बाय एयर का तो इतना था भी नहीं और अहमदाबाद से ही आना पड़ता था, तो इसीलिए उनको ट्रेन से जब रुके और गाड़ियां लेने के लिए पहुंची तो उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर यहाँ पहुंचे, बड़ी गहरी शांति, तो बहुत ऊंची आवाज में, गुस्से में हमेशा बोलने की जिनको आदत, उनको यहाँ सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक, वो 4:15 यहाँ ट्रेन रुकी और फिर ऊपर तक पहुंचने में 5 बज गए थे। गर्मी का मौसम, इतना सुंदर सुंदर पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां गए तो योग से कुछ लोग आ रहे थे, कुछ वहां चाय पी रहे थे और बड़ी गहरी शांति, बहुत सन्नाटा। वो जब भी कुछ बात करे, बहन से, गाइड से बात करे, तो उनको लगे मैं ही सबसे ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। वो कुछ बोलते थे, 2-4 लोग उनको देखने लग जाते थे तो उनको शर्म आती थी कि मैं तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा बोल रहा हूँ। वो धीरे 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 चुप चुप सा बोलते गए। अच्छा, विष्णुपुरी में रहने को मिला, बहुत अच्छा लगा उनको। और बड़े ए क्लास ऑफिसर थे। अच्छा, वहां गए, वहां और भी ज्यादा सन्नाटा, वहां तो लोग ही नहीं दिखाई दे रहे थे, सब अपने अपने कमरों में थे या कहीं बाहर थे। वहां से आके बहन ने उनको बताया कि आप नहा धो के निकलेंगे और 7-8 बजे तक भी तैयार हो जाएंगे, तो आप आइएगा और फिर बाबा का कमरा, मेडिटेशन रूम है, वहां थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट पर चलेंगे। 8:30 बजे वो बहन प्रतीक्षा करती रही तो पता लगा वो नहीं आए, तो बाकी साथियों को उसने पूछा तो कहते अच्छा वो आ तो रहे थे, कमरे से निकले तो थे, एसटीडी पर खड़े हो गए वहां। उन दिनों मोबाइल का इतना रिवाज नहीं था, 20 साल पहले नहीं था मोबाइल इतना फैशन में, तो वो एसटीडी पर खड़े हो गए। तो बहन ने जाके उनको कहा कि आप बाद में फोन कर लेते, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कहते बहन जी इतनी शांति है यहाँ, इतना सन्नाटा है, मैं जब से आया हूं ना, मैं रेगुलर इतना ऊंची आवाज में बोलने वाला, मेरी आवाज धीरे 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 ना कम होती जा रही है, मुझे लगा शाम तक कहीं मैं गूंगा ही ना हो जाऊं, आवाज लोप ही ना हो जाए, उससे पहले घर वालों को बता तो दूं कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं। इसलिए कहते मैंने सोचा पहले फोन करके बता दूं, ये अपने आप ही असर हो रहा है, अपने आप ही मेरी आवाज धीमी हो रही है, मुझे समझ नहीं आता ऐसे कैसे हो गया, अपने आप ही मेरे से ऊंचा बोलने को दिल ही नहीं कर रहा। ये सोचिए सिर्फ वातावरण का असर है, आए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, उतने में वातावरण का इतना अच्छा असर। उसके बाद वो 4 दिन रहे, जो उन्होंने वहां जाके एक्सपीरियंस सुनाया, 4 दिन यहाँ रहे। और यहाँ शीलू दीदी ने, उषा दीदी ने बड़े अच्छे शिविर, क्लासेस, आशा दीदी की क्लासेस, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के प्रोग्राम में आए थे, तो बहुत अच्छी क्लासेस, जिसमें एक सार तो उनको समझ में आ गया क्लासेस का, जितनी बार मिलते थे ओम शांति, मैं शांत आत्मा हूँ, ये बात उनको बार बार याद आती थी। अब आप सोचिए क्या हुआ उनके साथ, यहां से उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, बाबा से प्यार हो गया, भगवान है ये समझ में आ गया, इतना सुंदर ये भगवान का कार्य चल रहा है ये समझ में आ गया, क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग थी। वहां जाके इन्होंने प्रण कर लिया कि शांति मेरा स्वभाव है, कम से कम 1 महीना मैं क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रह के दिखाऊंगा। मेरी वाइफ कहती है भगवान भी उतर आए तो भी आप नहीं बदल सकते, उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बदल गया। तो ये सोच के उन्होंने अंदर से दृढ़ता से प्रतिज्ञा की, बहुत इज्जत प्यार मिला, यहाँ तो सब कुछ अच्छा लगता ही है, यहाँ किस पर गुस्सा करेंगे जहाँ इज्जत प्यार सब मिल ही रहा है। अब वो वहां से निकले और जिस दिन आप खुद देखना, मुरली में कभी आए ना, आज मीठा बनना है, आज ये होना है, आज बहुत बहुत मीठा बन के रहना है, सेवा में नम्रता भाव धारण करना है, उस दिन जरूर कोई ना कोई परीक्षा आ जाती है। जिस दिन आप सोचो कि आज तो इस बात पे पूरा अटेंशन देना है, अमृत वेले मिस नहीं करना, मुरली कभी मिस नहीं करनी, और जिस दिन दृढ़ प्रतिज्ञा करो उस दिन ही कोई ना कोई टेस्ट आ जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो यहां से नीचे उतरे आबू रोड, मन में पक्का था एक महीना शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। यहां से जाते ही नीचे पता लगा किसी कारण से सारे कुली प्लेटफॉर्म पर काले झंडे लेकर घूम रहे थे। जैसा आज है प्लेटफॉर्म, इतना सुंदर नहीं था, तब पुराने पुराने टाइप का सा था, और उसमें काले झंडे लेकर घूम रहे थे सभी, उन्होंने हड़ताल कर रखी थी। वो एक बार दिखे और फिर वो चले गए, कुलियों की हड़ताल। और वो भाई साहब बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने अपने आप कभी सामान नहीं उठाया था। अच्छा, उनको छोटी बस थी, उसमें बहुत से गेस्ट थे, तो उन्होंने उतार दिया, वो तो छोड़कर चले गए। अब वो सामान लेकर अंदर आए, वो वहां तक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, तो पता चला कि जो ट्रेन है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगेगी और कुली एक भी नहीं। अच्छा, उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ वेल फर्निश्ड बढ़िया रूम्स मिलेंगे। वो अपना छोटा सा बेडिंग भी साथ लाए थे, एक अटैची केस भी था, है ना, अच्छा सा बड़ा सा अटैची केस भी था, और एक बैग भी था, लंबी सी बेल्ट थी उसकी, विदेशी सा बैग था। अब 3 नग और अकेले वो लगभग 58 की एज उनकी, रिटायरमेंट के नजदीक, और इतना सामान उठा के सीढ़ी चढ़ के 3 नंबर या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से पर जाना, उनके लिए तो ये उनके वश की बात नहीं थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि एक तरफ जो ये मजदूर होते ना, रेलवे के मजदूर, तो रेलवे के मजदूर वो बड़े बड़े पेटियां और कुछ कुछ उठा रहे थे, तो उन्होंने जाके एक मजदूर से बात की, धीरे से अलग से बुला के, कि भाई मेरा सामान ना वहां छोड़ना है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो देखा ना इतने भार के हिसाब से तो थोड़ा सा ही सामान है, तो आप वहां छोड़ दोगे, तो जो कहोगे दे दूंगा। उसने देखा उनकी शक्ल, उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा, 5 मिनट का ही तो काम है, तो अभी चलो। अब जवान सा वो मजदूर उनके साथ आ गया, उसके पास ना वो सिर पे बांधने का वो भी नहीं था, क्योंकि वो तो पीठ पे भार उठाने वाले पलदार नहीं होते, पल्लेदार पलदार वो थे वो, तो वो वहां पहुंच गया और उसने फटाफट पूछा कहाँ है सामान, तो वो उसके ऊपर झुके हुए थे, उसको सामान बता रहे थे, ये मेरा अटैची है, और भी कईयों का सामान था ना, ये मेरा अटैची, ये बैग, ये वो, ऐसे बता रहे थे। तो जैसे ही वो ऐसे झुक के, वो मजदूर मजबूत लड़का था, जवान सीधा हुआ और उसका मजबूत सिर उनकी नाक पे लगा, पहला टेस्ट। एकदम इतना गुस्सा आया, दर्द में बिलबिला उठे, बड़ा बुरा लगा उनको, एक तो पसीने से भरा हुआ मैला सा सिर और इतनी जोर से नाक पे चोट खाई, लेकिन उनको तुरंत याद आया ओम शांति, गुस्सा नहीं करना, मेरी गलती है, मैं उसके सिर पे क्यों झुका हुआ था, मुझे दूर खड़े होके बताना चाहिए था, मुझे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए था, ये उसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। तो ये सोच के उन्होंने अपने मन को समझाया, ओम शांति बोला और वो उसको बता के चल पड़े। अब उसने देखो वो अटैची के सिर पे रख लिया ऐसे ही, बिना उसके वो इंडी से साफा सा बांधे बिना, उसके ऊपर उनका छोटा सा बेडिंग सा रख लिया और यहां पर अपना बैग टांग लिया। वो इतना तेज चल रहा था, वो तो जवान था, अब ये सोच रहे थे कहीं सामान लेकर भाग ही ना जाए, कोई बिल्ले वाला कुली तो वो है नहीं, तो ये उसके पीछे फास्ट फास्ट चल रहे थे। सीन देखिए जो उन्होंने बताया, उनके हिसाब से, हमने तो सिर्फ सुना ना उनके मुंह से, कहते जैसे वो मोड़ पे मुड़ने लगा, मैं उसके बिल्कुल पीछे पीछे था, जल्दी जल्दी चल रहा था, वो जो बैग था उसकी इतनी लंबी बेल्ट थी कि वो घूम के मेरे यहां लगा, इतनी जोर से यहाँ किनारे पर लगा मेरे साइड में, वखियां नहीं होती पंजाबी जी कहते, वखी बननी गई उदी। अब उसके बाद ये हाल था कि वो एकदम उनका बैलेंस बिगड़ गया, रेलिंग पकड़ी, गिरने से बचा और उसके बाद ओम शांति, मैंने गुस्सा नहीं करना, ये मेरा कसूर है, मुझे थोड़ा दूरी से चलना चाहिए था ये उसका दोष नहीं है, मैं क्यों उसके पीछे पीछे चला जा रहा था, वो बैग टकराया और चोट लगी। अब उसको भी पता तो चला मजदूर को कि इनके दूसरी बार लग गई है। अब उसके बाद वहां 3 नंबर पर पहुंचे, वहां उसने बैग उतार के रखा, ऊपर से वो छोटा सा बेडिंग उतारा, और कुदरती ऐसा हुआ कि उसका हैंडल एक तरफ से तो पकड़ रखा था उसने अटैची को, लेकिन हैंडल को ढूंढते ढूंढते हाथ ऐसे करते करते सिर पर कुछ था नहीं और वो फिसल गया। सोचो अटैची थोड़ा सा फिसला और फिसलते फिसलते, उसका कद लंबा था इनका थोड़ा छोटा था, वो गिरा और गिरते गिरते उनके कंधे और यहां पर चोट मारता हुआ अटैची था नीचे गिरा। अटैची को भी क्रैक होने का खतरा था, उनके कंधे भी छिले गए, यहां भी चोट लगी और एकदम बहुत बुरा लगा, दर्द तो हुआ ही। अब जैसे दर्द हुआ गुस्सा आया, उन्होंने अपने मन को समझाया, शीलू दीदी ने कहा था ओम शांति, शांत रहना है, मुझे थोड़ा दूर खड़े होना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना, अभी तो ये पहला ही दिन है, 29 दिन और बाकी हैं, अभी तो 30 दिन का व्रत लिया है, दिस इज माय फर्स्ट डे। अब ये सोच के उन्होंने उसको कहा कितने पैसे दूं। अब आप सोचिए जब उन्होंने कहा कितने पैसे दूं, उस मजदूर पे क्या बीती होगी, उसको पता तो था 3 बार तो ये चोट खा चुका, 3 बार मार खा के भी कह रहा कितने पैसे दूं, हाथ जोड़ के कहता साहब आप तो देवता है मार खा के भी पैसे पूछ रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो खास बात उन्होंने सुनाई, वो कहते मैंने केवल 3 बार सहन किया, वो भी अपने मन को समझा समझा कर जबरदस्ती सहन किया, तो भी उसने मुझे देवता कह दिया। अगर मैं सहज भाव से टॉलरेंट बन जाऊं, सहनशील बन जाऊं और रोज इस पर मैं ध्यान दूं और सहजता से सहन करना सीख जाऊं, केवल एक गुण से ही मैं देवता बन जाऊंगा, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया। अब आप सोचिए कि सचमुच बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, इस कलयुगी माहौल में केवल 3 बार जबरदस्ती सहन करने पर उसे देवता का टाइटल मिल गया, और आप सब में हम सब में ये गुण ऑटोमेटिकली कितने सालों से मुरली सुन रहे हैं, कितना सहज भाव से आ जाने चाहिए, नो रिएक्शन, सिर्फ एक जुबान का कड़वापन, तलखी से बोलना, रिएक्शन गुस्सा, सिर्फ यही छूट जाए ना तो हर जगह लोग आपको देवी देवता कहने लग जाएंगे, वे हमारी माँ में तो कुछ खास हो गया, हमारी माँ तो देवी बन गई जब से वहां जाने लगी। कभी कभी कहते भी होंगे, कहते हैं ना, कभी कभी तो कहते होंगे, लेकिन फिर जब कई दिन तक अच्छा रिकॉर्ड चलता है उसके बाद पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। अब सोचो जो कभी कभी वाला सीन है कि कभी कभी खुश होके लोग कहते भी हैं और आपको भी ये लगता है, प्रैक्टिकल देखो किसी को ज्ञान सुनाते हैं, वो गुस्से में कुछ बोल भी देता है, वो कह भी देता है नकली है, किसने देखा है सतयुग, ये वो स्वर्ग वगैरह, ऐसी बात भी बोल देता है, ज्ञान के अगेंस्ट भी बोल देता है, वो आप चुपचाप सहन कर लेते हैं, फिर उसे बेचारी आत्मा समझ के उसे सकाश भी देने लग जाते हैं, उसको दृष्टि भी देने लग जाते हैं, इतना भी कर लेंगे, बाहर वालों की तो सहन कर लेंगे, लेकिन जो घर में लौकिक में रहते हैं नजदीक, टेस्ट तो वो लेते हैं ना आपका, और आप कहते भी हैं, सारी दुनिया कहेगी बड़ी मीठी माता है ये, बहुत अच्छी है, दीदी भी बड़ा प्यार करते हैं, बड़े प्यार से सेवा बताते हैं, लेकिन ये घर वालों के साथ पता नहीं क्या हिसाब किताब है, जितनी मिठास भर के जाते हैं वहां जाते पता नहीं वो क्या घोल देते हैं उसमें, वो सारी मिठास खत्म हो जाती है। घर में भी सभी नहीं, कोई एक आधी आत्मा होगी, है ना, कोई बेटा होगा, कोई पति तो है ही है, खैर वो तो जन्म जन्म का उसके साथ हिसाब किताब है, वो तो हिसाब किताब है लंबा, तभी तो वो पति पत्नी बन के आते हैं, जब पिछले 500-600 सालों में इकट्ठी होते होते खुंदक खीज रिएक्शन, है ना, ये इकट्ठा हो के जब बड़ा हो जाता है ना तो वो पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं फिर वो ये हिसाब किताब गहरा है। और मजेदार बात यह है कि लंबा चलता है 50 साल तक, सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, उसके बाद भी पता नहीं कितनी जुबली मना लेते हैं। हिसाब किताब लंबा चलता रहता है। तो उनके साथ जो हिसाब किताब है, वो जो रिएक्शन है, वो ज्ञान को साइड कर देता है। उस वक्त मैं बीके, मैं बाबा की बच्ची, मैं स्वर्ग स्थापन करने वाली, आज बाबा ने कहा तू राज ऋषि है, और जो अच्छी अच्छी बातें कही, होली हैप्पी मूड वाले हैं, ये सारी बातें भूल जाते हैं। बाबा ने कहा उनके मूड चेंज होते रहते हैं, आज त्योहार है वो इसलिए खुश रहते हैं, भाई आज का त्योहार का दिन है, आज मूड ठीक रखना। एक दूसरे को बोलते भी ऐसे हैं, है ना, भाई आज त्योहार का दिन, आज मेरा मूड ना खराब करना प्लीज। सवेरे से ही ना अलर्ट करना शुरू कर देते हैं, आज त्योहार का दिन है, आज कोई बात ना बढ़ाना, आज बहस मत करना, आज ठीक रहना। तो वो त्योहार का दिन है, त्योहार का दिन है, ऐसे कह कह के मूड को ठीक रखते हैं। और आपका मूड ऑलवेज हैप्पी एंड होली है, इसलिए आपका हर दिन ही त्योहार है। आपको त्योहार के दिन अच्छा मूड नहीं बनाना पड़ता, आपके अच्छे मूड के कारण हर दिन त्योहार ही त्योहार है, उत्सव ही उत्सव है। तो इसीलिए आप ऑलवेज हैप्पी एंड होली मूड वाली आत्माएं हो। इतनी पवित्रता आपके पास है, वो सारी पवित्रता का मदार है कि जितना ज्ञान समझ में आया, जितना योग अच्छा लगा, उसके साथ साथ पांचों विकारों पर विजय। खाली एक ही विकार पर विजय नहीं, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए सारे दिव्य गुण चाहिए होंगे। जिस जिस में आपकी विशेषता हासिल है, आपको एक्सपर्टाइज है, उसका नाम देवी का विशेष आ जाता है। उमा देवी, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली देवी, है ना, गायत्री सरल चित्त, गाय जैसी सरल आत्मा, बहुत किसी से बहस जिद इसमें नहीं आने वाली। इसी तरह लक्ष्मी ज्ञान धन का दान देने वाली देवी। तो ये तो एक्सपर्टाइज है कि आपने उस विषय पर ज्यादा मेहनत की, लेकिन गुण तो सारे ही चाहिए। ये थोड़ी कोई वो लक्ष्मी ज्ञान धन का दान कर रही है तो वो गुस्सा करना अलाउड है उसको। तो इसीलिए उमा है तो उमंग उत्साह बहुत है, लेकिन उसको अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए गुस्सा करना अलाउड है, वो तो अलाउड है ही नहीं ना। तो इसीलिए गुण तो सारे ही चाहिए हर देवी को, हर एक देवता को। तो जो जितने गुणवान है, उतना बाबा उसको उतना प्यार और मीठी नजर से देखेगा, इसलिए कि वो सैंपल तैयार हो गया। अब ये सैंपल दिखाया जा सकता है कि देखो भाई यहाँ इस विश्वविद्यालय में ऐसे बनाए जाते हैं, वो ऐसा दिखाने के लिए है ना। तो अब सोचिए एक सैंपल जो दिखाया जाए कि ये कुछ भी आप बोलो, कुछ भी कहो, ये हमेशा हैप्पी एंड होली मूड वाले मेरे बच्चे हैं, ये दिखाने के लिए, उस पर कितना प्यार आएगा, क्योंकि भगवान का आधा काम तो उसी से ही हो गया। अब जो सेल्समैन है या कोई और मार्केटिंग वाला व्यक्ति है, उसको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता जब माल बहुत अच्छा होता है, वो दिखाई देता है, वो माल खुद बोलता है ना। ऐसे ही हम सब सैंपल इतने अच्छे तैयार हैं कि सैंपल खुद ही इटसेल्फ ही अपने आप बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सैंपल इतने अच्छे हैं, इसीलिए उसकी ज्यादा वर्णन नहीं करना पड़ता उसका। तो हम सभी को इस तरह का सैंपल बनने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कर्म ही वो सुंदरता है जिस पर सेवा का नाम, सेवा की स्टैंप लग जाएगी। हर कर्म की पूजा होनी है, तो इसीलिए हर कर्म ही सेवा है। उठना बैठना चलना सब कुछ सेवा है। एक भाई ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया, कहता हमारी बहन जी 85 जनों की पार्टी लेकर आ रही है। सोचो दो माताएं, ट्रेन चल गई, वो खड़ी बातें कर रही है आपस में, बस शुरू हो गया टॉपिक, शुरू हो गया कोई बहू पे हो गया या किसी पर हो गया, वो याद ही नहीं रहा, ट्रेन चलती दिखी नहीं उनको, और बहन जी उनको देख रही है ना, भाई वो खड़ी हैं, बाकी सब चढ़ गए, उनका सामान अंदर है, उतर गई होंगी। सोचो फटाफट बहन जी गए, उन्होंने वहां से ट्रेन से छलांग सी लगाई, जल्दी से उनका हाथ पकड़कर लेकर आए, उनको चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। कहते बहन जी आसान काम नहीं है, 85 85 लोगों की सिर दर्दी, किसी के पास सीट नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, किसी के पास ऊपर की बर्थ पे नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगी, ऐसी ऐसी बातें, और कोई कुछ, कोई कुछ, कोई टीटी से झगड़ पड़े, कोई कुछ बोल दे, वो सारा का सारा हमारी बहन जी ठीक करे, कोई कुछ भी करे चाहे। तो 85 लोगों को लेकर आना, सोचो स्कूल में इतने का ट्रिप लेकर जाते हैं ना, तो वो टीचर बहुत सारे होते हैं और वो तो बच्चे होते हैं, बच्चों को आंख दिखाई डांट मारी कहना मानते हैं, तो एक लाइन में उतरेंगे एक लाइन में चढ़ेंगे, ये कोई बच्चे थोड़ी है, अपनी मर्जी से चढ़ेंगे, अपनी मर्जी से उतरेंगे, मर्जी से बात करेंगे, मर्जी से सोएंगे बर्थ पर, ऐसे होगा। अच्छा कोई एसी में है, कोई स्लीपर में है, कोई कहीं है, आके कहता धन्य है बहन जी, फिर भी इतना करके भी वो होली होली मीठा मीठा ही बोल रहे हैं, कहते उसके बाद भी मतलब नहीं कि वो ऊंची आवाज में बोल के किसी को ये कह दे भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, ऐसा कहते भी नहीं फिर भी। तो सोचो इस एक विशेषता के कारण धैर्य, अपने थॉट्स पर पूरा संयम, फिर भी जुबान पर कंट्रोल, इस एक की वजह से वो व्यक्ति इतना ज्यादा अभिभूत, वो इतनी पूरी क्लास इतनी ज्यादा इम्प्रेस कि हमारी बहन जी तो पूरी देवी है जी, देवी बनने की जरूरत नहीं, वो अभी देवी है। कितना कितना एडजस्ट कर करके, कितनी सेटिंग से वो कैसे करके आ रही हैं। तो इस तरह ये तो वो हैं जिनके साथ कभी कभी इस तरह का साल में एक बार दो बार बनता है हिसाब किताब। इसीलिए चलो आप भी ठीक है, आपको कह दिया जाए आप भी कभी ना कभी ये मेहनत कर लेंगे, चलो 8-10-20 की पार्टी आप भी ले आएंगे, बड़ी शांति से ले आएंगे, आप भी पालना दे देंगे। लेकिन जो घर परिवार में रहते हैं लौकिक में, वो आपका हर कर्म देखते हैं, हर कर्म, जैसे आप भी तो देखते हैं ना, उस वक्त हर कर्म दिखाई देता है कि ट्रेन छूट रही है तो भी शांत, कोई काम नहीं हो रहा है तो भी शांत, सारे सारे के सारी तैयारी हो गई प्रोग्राम की और उसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश आने का खतरा और टेंट और सारा भीग जाएगा और सारा प्रोग्राम फ्लॉप शो हो सकता है, तो भी मन शांत, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, अपने हाथ में तो है ही नहीं। ये सारी चीजें डेली ये शो करती है कि आपके कर्म, आपका सोचना, फिर आपका कर्म कैसा है, यही आपकी सुंदरता है। इस सारे ज्ञान योग की सुंदरता आप वर्णन कितना भी कर ले, मेरी ये आदत है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बचपन से ये किया, हमें ऐसे संस्कार मिले, हम ऐसे करते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, ये वर्णन किया हुआ सब भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता, लेकिन देखा हुआ, प्रैक्टिकल में देखा हुआ सबको याद रहता है। तो प्रैक्टिकल में जो हो रहा है उसका गायन होगा, क्योंकि आप, हम सतयुग में बोलते थोड़ी है ज्यादा, सतयुग में कोई प्रवचन देगा क्या? सतयुग में जरूरत है किसी को उपदेश देने की, प्रवचन देने की? ना वहां कोई ज्ञान सुनाता है, ना वहां मुरली है, ना वहां ये पूछते हैं क्या हालचाल है, तेरे बेटे का IIT में हुआ कि नहीं हुआ एडमिशन, है ना, उसको इंजीनियरिंग में मिली के दाखला मिला कि नहीं मिला, कोई पूछता है तुम्हारे दांत के दर्द का क्या हालचाल है? वहां कोई दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, कोई हालचाल नहीं पूछता है, तो वहां करेंगे क्या फिर हम, जब एक दूसरे के घर जाएंगे, दावत में जाएंगे, मिलेंगे, क्या करेंगे? यहां तो बहुत है बातें करने को, रास करेंगे, हम जाते ही रास करने लग जाएंगे, यही सब, मुस्कुराएंगे, फवारे चलेंगे, खुशबू उड़ेगी, एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करेंगे, रास करेंगे, वहां कोई हालचाल नहीं पूछना है, किसी का कोई दुख दर्द नहीं है, किसी का पास्ट नहीं है, किससे कहानियां नहीं है, फ्यूचर का डर नहीं है कि हम ये इसलिए जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारी आगे की ये प्लानिंग है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बातें इसलिए नहीं है कि थॉट बहुत कम चलते हैं। बच्चों को क्यों कहते हैं, हम बच्चे सुखी हैं, बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं, उनके थॉट्स नहीं चलते कि अभी मम्मी आएगी ग्राउंड में से उठा के ले जाएगी और फिर हमारा गेम बंद हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, वो सोचते हैं क्या? ऐसा नहीं सोचते वो, है ना, जब तक वो मैदान में खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, फुल एंजॉय कर रहे हैं वो। फिर उसके बाद जब मम्मी कहती है भाई चलो अभी घर खाने का या सोने का टाइम हो गया, उनको उठा के ले जाती है अपने अपने घर, वो रोते थोड़ी है, हाय मेरा वो दोस्त मैं उसे मिस कर रहा हूँ। कोई 3 साल का बच्चा, कोई 2.5-3 साल के बच्चे बच्ची के लिए ऐसा कहे कि मेरा उसके बिना दिल नहीं लग रहा, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, कोई नहीं कहते। वो जहां जाते हैं उनका दिल लग जाता है। ऐसी स्थिति हमारी वहां 70, 80, 100, 150 साल की उम्र तक रहेगी, इतनी इनोसेंट स्टेट ऑफ माइंड। संकल्प इतने कम चलेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। जितने कम संकल्प उतने हमारे हर कर्म सुंदर, हर कर्मों में सुंदरता। और यहाँ कर्म कुछ भी कर रहे हैं, इतने संकल्प चलते हैं, इतने संकल्प चलते हैं कि अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे होते हैं ना, वो भी दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए कहते हैं काम तो कर रहे हैं पर इनका मूड ठीक नहीं है, क्योंकि मूड कैसे दिखाई दिया, जितना यहाँ तूफान मचा हुआ है, जितना यहाँ बवंडर है, वो चेहरे पर दिखाई दे जाता है। टेंशन है वो चेहरे पर दिखाई दे जाती है। इसीलिए फिर लोग कह देते हैं भाई कर तो रहे हैं सेवा, इकट्ठे मिलके दीदी ने कह दिया भाई जाना है, प्रदर्शनी लगानी है, सेवा करनी है, तो करते तो हैं, लेकिन वो सारा टाइम सेवा में ही गिनती हो, ये चेक करने की जरूरत है कि कितना आप जो कर रहे हैं वो सेवा सेवा ही होनी चाहिए। वो तब होगा जब उसमें कम से कम संकल्प चलेंगे, बाबा के लिए, बाबा की सेवा, बाबा ने कहा और हम बच्चों की तरह करने आ गए, बस। उसमें भी ये चेक करते रहते हैं वो टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो ऐसे क्या कर रहा है, वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, कई उसमें चौधरी बन जाते हैं। प्रदर्शनी लगाने को कहा, हम थोड़ा पुराने हो गए, हम थोड़ा चौधरी बन गए, वो डायरेक्शन देने लग जाता है, कोई रोब मारने लग जाता है, कोई उसके रोब को सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई उसे क्रिटिसाइज करने लग जाता है। सोचिए 10 लोग भी मिलके काम नहीं कर सकेंगे अगर, तो लोग हमारा गायन कैसे करेंगे। अगर आपको कह दिया और उस वक्त दीदी नहीं है, वो किसी और सेवा में चली गई है, तो हम कर सकें, ये हमारी निर्माणता ही वहां सुंदरता को बढ़ाएगी। लोग ये नहीं देखते कि आप प्रदर्शनी में चित्रों पर कितना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, लोग ये भी देख रहे होते हैं कि आप आपस में व्यवहार कैसा कर रहे हैं। दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है ना। आप प्रदर्शनी समझाते समझाते किसी को जोर से आवाज लगाओ, देखो वो वहां से घुस रहे हैं, उनको संभालो, उनको निकालो, इतनी जोर से आवाज में बोलो, उनको समझ में आ जाता है ये समझा तो रहे आत्मा का ज्ञान, लेकिन इनको खुद को गुस्सा आ रहा है या खुद ये डिस्टर्ब हो गए। एक बार तो एक भाई इतने अच्छे से ज्ञान सुना रहा था, आत्माभिमानी स्थिति ये वो, और एक सरदार जी बड़े प्यार से सुन रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आत्मा ही सब कुछ है ना, शरीर तो हमें सिर्फ एक्टिंग करने को मिला हुआ है, ये बात मुझे समझ में आ गया, आपने यही समझाया ना। कहते हाँ यही समझाया है। तो शरीर तो बस ऐसे यूज करने के लिए है ना, सेवा करने के लिए और एक्टिंग करने के लिए। कहते हाँ जी हाँ जी। तो फिर शरीर के इतना पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। उस भाई को कहता है अब देखो आपने बाल काले किए हुए हैं तो इसकी क्या जरूरत है। कहता अब आप सोचिए लोग क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ उनकी नजर होती है। इसलिए हमें कितना ज्यादा सोल कॉन्शियस, कितना अलर्ट, कितना अपने संकल्पों पर कंट्रोल, इन सारी चीजों को कितना देखने की जरूरत है। हम सभी वो आत्माएं हैं जिनका एक एक कदम स्वर्ग बनाने के काम में लगातार हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए हमारा बोलना, चलना, मुस्कुराना, जितने हमारे संकल्प चल रहे हैं वो जो दिखाई देंगे, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है ठीक करना। इसको कोई दूसरा ठीक नहीं करेगा। बाबा तो मुरली सुनाएंगे और उस मुरली के अनुसार जो जांच करनी है, जब बाबा कहते जज योर सेल्फ या जांच करो, तो वो जांच करने का काम हमारा अपना है, क्योंकि लास्ट में तो धर्मराज ही जांच करेगा बस। अगर अब हम अपनी जांच नहीं करेंगे तो फिर धर्मराज का काम है जांच करना। वो जैसी जांच करेगा वो पसंद नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो कैसी जांच करता है, वो सारा झाड़ ही देगा। जो जो उसको ठीक नहीं लगेगा वो सारा झाड़ना उसे आता है। तो इसीलिए दूसरा उपाय, दूसरी ये रेमेडी काम ना आए उससे पहले पहले मैं योग से और ज्ञान के प्रयोग से, जो लाइफ में ज्ञान का प्रयोग करना है उससे मैं खुद को ठीक कर सकूं, इसी पर फुल अटेंशन देना है। हमें पता है हमारे कर्म कितने दूर तक चलते हैं। एक भाई ने एक लॉटरी का टिकट पकड़ाया मुझे, मुझे कहता हाथ में पकड़ के इसको दृष्टि दो। मैंने कहा क्या करना है इसका, कहता आप इसे दृष्टि दो, लक्की ड्रॉ निकल आए मेरे को। तो मैंने कहा कब से खरीद रहे हो, तो उसने बताया चौथा साल है, दिवाली से 10-15 दिन पहले दिवाली वाले दिन लक्की ड्रॉ निकलेगा, और इतना कॉन्फिडेंट था जैसे मेरे नाम ही निकलेगा। तो कहता 4 साल से खरीद रहा हूं, 3 बार मैंने कहा कुछ हुआ, लॉटरी निकली कभी, लॉटरी खुली, कहता नहीं। तो इस चौथे साल में मैंने कहा इससे पहले क्या करते थे ज्ञान में, तो आप अभी आए हो 8-10 महीने से, 6-7 महीने से, इससे पहले क्या करते थे? कहते मैं टिकट खरीद के लाता था, लक्ष्मी जी की फोटो के नीचे रख देता था कि माँ लक्ष्मी कृपा करेगी, और अभी बाबा समझ में आ गया कि बाबा ही बाप है, लक्ष्मी का बाप भी वही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाबा हेल्प करेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगी लाइफ। 100 रुपए की टिकट लेके मैंने कहा कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितना निकलना चाहिए? कहता लास्ट इनाम 1 लाख रुपए है, 100 रुपए में 1 लाख रुपए मिल जाए तो और क्या चाहिए बताओ। अब सोचिए आप कर्म सिद्धांत हमारा, 100 रुपए में 1 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? हमने पूछा कि आपने इस जन्म में 1000 लोगों को 100-100 रुपए दान किए थे? कहता नहीं जी, छोटा सा क्लर्क हूं, ऐसा कहां किया मैंने, 1000 लोगों को 100-100 रुपए क्यों दान करूंगा मैं? क्योंकि आपने 100 रुपए की टिकट ली है तो औरों ने भी 100-100 रुपए की टिकट खरीदी होगी ना? कहते हाँ जी। तो 1000 लोगों को जब आपने 100-100 रुपए दिए नहीं, तो लॉटरी का मतलब तो यही है ना कि उन्होंने इकट्ठा किया, वो पैसा आपके पास आ गया, एक पर्ची आपके नाम निकली, वो आपको मिल गया, वो आपने कभी किसी को दिया नहीं, इसीलिए 4 साल से आपको कोई लॉटरी निकली नहीं। अब आप सोचिए कि जब दिया नहीं तो मिलेगा कैसे? लक्की ड्रॉ कुछ नहीं होता है, जो दिया है वही मिलता है। सिर्फ स्वास्थ्य का दान दिया, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, धन दिया धन मिलेगा, किसी को रहने को छत दी है आपको अच्छा घर मिल जाएगा, बहुत प्यार से किसी को खाना खिलाया अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, अच्छी सेहत मिलेगी, गालियां दे दे के झिड़कियां मार मार के खाना खिलाया है तो खाना मिलेगा लेकिन हजम नहीं होएगा, एसिडिटी बन जाएगी, क्योंकि जब जब वो खाने बैठा तब तब आपने उसका एसिड बढ़ा दिया, एसिडिटी बढ़ाई आपने, तो इसीलिए कैसे मिलेगा? तो जो दिया है वही मिलेगा आपको। और अगर कुदरती आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी मिल भी गई तो उसके बाद रिजल्ट पता है क्या होगा? जो आप 1 साल में 1 बार टिकट खरीदते हो वो देखना आप क्या करोगे। 1 लाख रुपया मिल गया बिना मेहनत के, मात्र 100 रुपए में, आप हर हफ्ते, फिर हफ्ते में 2, फिर हफ्ते में 3, 100-100 रुपए ट्राई मारने में क्या जाता है? आप इतनी बार टिकटें खरीदोगे, तब तक खरीदोगे लॉटरी की टिकट जब तक, हाँ देखो अच्छी तरह ज्ञान है ना, जब तक वो 1 लाख वापस नहीं चला जाए जिनका इकट्ठा होके आया है, उनको वापस जब तक ना चला जाए तब तक खरीदोगे आप। तो इसीलिए किसी से कहीं से अचानक कोई लॉटरी नहीं निकलती, कहीं से अचानक कुछ गिरता नहीं है, कोई जादू और चमत्कार नहीं होता। जो दिया है वो पुण्य कर्म जमा होता है, वो पुण्य कर्म अचानक मिलता है उस वक्त जब आपको जरूरत होती है। तो ये इतना अच्छा कर्म सिद्धांत है, इतना एक्यूरेट कर्म सिद्धांत है कि वो अचानक उस वक्त मिलेगा, वो पुण्य कर्म आपके इकट्ठे किए हुए, आपको लगेगा वाह चमत्कार हो गया। अच्छा वो पुण्य कर्म कैसे किए थे? तब भी बाबा ने ही अकल दी थी श्रेष्ठ कर्म करने की, और अब भी वही अकल दे रहा है कि पुण्य कर्म करके ज्यादा शेखी में मत आ, है ना, ज्यादा चौड़ा मत हो, क्योंकि अकल किसने दी, बुद्धि किसने दी, बाबा ने दी। तो इसीलिए बाबा ने ही सिखाया, बाबा ने दिया, उसके अकॉर्डिंग आपके अच्छे संकल्प चले, आपने किया, और उसका रिजल्ट अच्छा निकला। तो इसीलिए आपका एक एक कर्म इतना खूबसूरत हो, इतना सुंदर हो कि वो सेवा में गिनती हो सके। क्योंकि ये बाबा ने अनगिनत बार एग्जाम्पल दिया है अव्यक्त वाणियों में कि तुम्हारे हर कर्म की पूजा होती है, हर कर्म की। ठाकुर जी नहा रहे हैं, नहाते समय भी आप योग में रहते थे। ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, घंटियां बजती है, पर्दा लगता है, मंत्रों उच्चारण होता है, ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लग रहा है, ठाकुर जी खेलेंगे, चांदी का गुल्ली डंडा, चांदी की बॉल और बैट उनके पास रखा जाता है। ऐसा बहुत जगह द्वारका जी में और भी कई जगह ऐसा होता है। श्रीनाथ द्वारे में, द्वारका जी में इस तरह के सीन बनाए जाते हैं। अभी देवी जी स्नान करेंगी, देवी जी उसमें जाके रेस्ट करेंगी, उनका सोने का बढ़िया बेड बिछाया जाता है, फिर उनकी मूर्ति को वहां लाके सुलाया जाता है। हर कर्म की यादगार तब बनी, ये आपको मालूम है, आपने कई बार मुरली में सुना है। सिर्फ आपके बोलने की यादगार देखो कि देवी देवता वरदान देंगे, महावाक्य उच्चारण करेंगे, आकाशवाणी होगी, इतना महत्व देते हैं वो। आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अच्छा अच्छा बोलेंगे तो वो महावाक्य होंगे, आकाशवाणी की तरह होगा। और जब ज्यादा बोलेंगे तो लोग दुखी होके कहेंगे बस चुप कर, ऐसे ही बोलेंगे ना। इससे भी ज्यादा कुछ बोलते हैं वो, आपको पता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं या कोई और ज्यादा बोलता है तो आप उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है। तो इसीलिए अपने जुबान की, कर्म की, सोच की, इस सारे की सुंदरता बढ़ाते बढ़ाते हम सुंदर स्वर्ग बनाएंगे। और सुंदर स्वर्ग बने इसकी शुरुआत मुझे रोज मुरली सुनते ही करनी है, हर रोज अभी से करनी है। अभी इसी तरह से आप थोड़े से भाई बहन हैं, कल परसों जब सौगात बटी थी इतने ज्यादा भाई बहन थे डायमंड हॉल में, लेकिन व्यवस्था करने वाले कितने होशियार हैं और आप व्यवस्थित होकर लेते हैं, वो हर कर्म की सुंदरता दिखाई देती है। आप बीच में से आते हैं, यहाँ सीढ़ियां हैं, है ना, और इसके ये निकले हुए हैं, इसके पैर निकले हुए हैं, जो ये पार्टीशन रखा हुआ है। अगर यहाँ गुस्से से, जोर से किसी को खींचते हुए, किसी को धक्का मारते हुए चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? फिसल गया पैर और गिर जाएंगे। जो गिर गया भले उसको दिखाई नहीं दिया कि किसने धक्का मारा, लेकिन वो दुआएं कितनी देगा फिर, और वो मिलेंगी ना, वो लगेंगी, क्योंकि वो भी पवित्र ब्राह्मण है। तो इसीलिए उसके चोट लगी, उसको दर्द हुआ, उसके संकल्प चले, उसने तुरंत अंदर से भेज दिया वो आहें, वो रिएक्शन वापस कर दिया। अब वो जब मिलेगा, जब कभी मेले में, बस स्टैंड पर कहीं ना कहीं अचानक धक्का लगेगा, गिरेंगे, तो कहेंगे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, है ना, मैं तो कभी किसी का माड़ा नहीं किता, मेरे नाल क्यों होया। जब ऐसे बोलते आपको याद थोड़ी आता है कि कब कब कहां कहां बुरा किया हुआ है, तो ये वो बात याद नहीं रहती है। इसीलिए हर कर्म ही सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुझे परेशानी होने वाली है। अपना कर्म ही अगर हम अच्छी तरह नहीं करें, वो भी पता नहीं कितनों के नुकसान का कारण बन जाता है। इतने इंटरेस्टिंग सीन होते हैं कई बार, तो भीड़ में वो जो पूरा ग्रुप आया होता है ना, एक शहर से 5-6 माताएं आई होंगी, वो इकट्ठी सौगात लेने के लिए उठेंगी जहां ज्यादा भीड़ होती है, और एक दूसरे की गले में चुन्नी बांधी हुई है, चुन्नी को पकड़ के खींच रखा है, भाई तू गुम ना हो जाए, हम इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, उस माता को इस चीज से तकलीफ नहीं है कि वो चुन्नी खींच रही है, गर्दन पीछे जा रही है, तकलीफ उसको तब होती है जब सेवाधारी कहता हाथ छोड़ो, अलग अलग चलो। तकलीफ भी उसी से होती है उसको, चाहे उसकी गर्दन खींच रही है, चाहे खुद हाथ खींच रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब सेवाधारी कहते हैं हाथ छोड़ो, अलग अलग चलो, आगे पीछे हो जाओ, लाइन ठीक से चलो, उसका हाथ जो छुड़वाएगा उसको घूर के देखती हैं। भाई आपको ठीक रखने के लिए किया जा रहा है, आपको नुकसान ना हो, आप सुरक्षित पहुंच जाए इसके लिए किया जाता है कि बाप के घर में आप बिल्कुल सुख शांति से रहें, सुख शांति से हंसते खेलते वापस जाएं। कितनी मौज है, सोचना भी नहीं पड़ता क्या बनाना है, थाली ली और चल पड़ते हैं ना। तो सोचो इतना खुशियों भरा माहौल ये दिन सतयुग में नहीं मिलेंगे, वहां इतने लोग कहां इकट्ठे होंगे, वहां तो थोड़े से लोग भी इकट्ठे होंगे तो कहेंगे दावत हो गई, वहां कोई सुनेगा कोई 25,000 इकट्ठे हुए, कभी नहीं होंगे वहां पर। तो इसीलिए ये मौज अभी इसी संगम युग की है, ये ब्राह्मण परिवार अभी खुशियां और सुख देने वाला है, लेकिन ये सारा सुख मिलता है हमें संकल्पों पर संयम और संकल्पों की पवित्रता से। जितना होली होली सोचेंगे, होली रहेंगे, होली मूड बना रहेगा, बच्चों जैसे हैप्पी रहेंगे, और जितना बच्चों जैसे हैप्पी रहेंगे, किसी की बातें किसी के दाग यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो देखना हमेशा मुस्कुराता हुआ खिला हुआ चेहरा रहेगा, नहीं तो सबको देखकर मुस्कुराएंगे और जिसके लिए मन में कुछ दाग धब्बा उसको देखते शक्ल बिगड़ जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यहाँ से अच्छे पुरुषार्थ का, अच्छी लगन का सब अच्छे पॉइंट्स लेकर जाएं, और आपका जीवन ब्राह्मण जीवन इसके बाद का बहुत खुशियों भरा हो, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।